ध्यान करने के लिए आराम से बैठ जाएं, अपने सांसों पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, मेरे आसपास के सभी लोगों को, पंछियों को, पौधों को, सभी प्रकार के जीवों को, सभी सभी बड़े और छोटे प्राणियों को जीवन के अनंत स्वरूप का अनुभव हो। हे परमपिता परमात्मा, आशीर्वाद दें कि हम सब एक साथ उस ब्रह्म तत्व की ओर, उस परम तत्व की ओर आगे बढ़े। हे प्रभु, हर प्राणी पर, हर जीव पर आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम, आपकी करुणा, आपकी कृपा सतत बरसती रहे। हे प्रभु, हर दुखी मन पर आपकी कृपा सदा बरसती रहे। हे परमपिता परमात्मा, जीवन के हर रूप, हर स्वरूप, हर ढंग पर आपका चैतन्य सदा बरसता रहे। हे प्रभु, जीवन की इस विराट और अनंत विस्तार को हम अपने हृदय में अनुभव कर सकें, इसे समझ सकें, इसमें डूब सकें, इसमें खो सकें, ऐसा आशीर्वाद हमें दें। हे प्रभु, जीवन का हर क्षण, हर एक श्वास, हर क्रिया, हर भाव, हर विचार आप ही की ओर बढ़ता हो, आप ही में आके मिलता हो, आप ही से उठता हो। हम अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करें और दूसरों का इसमें सहयोग करें, ऐसा आशीर्वाद हमें दें। ओम तत्सत परमात्मने नमः। ओम शांति शांति शांति। परमात्मा के श्री चरणों में छोटी सी प्रार्थना करने के बाद अब हम आज के अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे चारों पुरुषार्थों के बारे में, जीवन के समग्र विकास के बारे में, अंडरस्टैंडिंग लाइफ इन टोटैलिटी एंड लिविंग इट। जीवन को उसकी पूर्णता के साथ कैसे जिया जाए, हम इस पर बात कर रहे थे। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हमने कहा कि चार पुरुषार्थ जीवन के चार परम लक्ष्य हैं। चारों पुरुषार्थों में से हमने धर्म पुरुषार्थ की बात की। धर्म पुरुषार्थ में फिर हमने कहा कि धर्म पुरुषार्थ को अगर एक सिंपल तरीके से समझना हो तो कमिटमेंट फॉर सेल्फ इवोल्यूशन। धर्म पुरुषार्थ का तात्पर्य क्या है? आत्मज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर लगातार बढ़ते रहें, हमारी तैयारी, हमारी साधना, हमारा जीवन जीने का ढंग सब कुछ ऐसा हो कि हम आत्मज्ञान के पथ पर, आत्मस्वरूप के पथ पर, उसको जानने के लिए, उसे अपने भीतर अनुभव करने के लिए धीरे 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 उस मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएं। और भगवान ने कहा कि ये 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 धर्म पुरुषार्थ को थोड़ा और डिटेल में देखें तो गीता में यहाँ वहाँ जब सारी चीज़ों को समेटते हैं तो क्या दिखता है? धर्म पुरुषार्थ में आता है स्वधर्म की पालन करना, नैतिक धर्म का पालन करना, सामाजिक धर्म का पालन करना, अपने आध्यात्मिक धर्म के पथ पर सतत आगे बढ़ते चले जाना। स्वधर्म में कौन कौन सी चीजें आती हैं तो आपको याद होगा, स्वधर्म में हमने कल थोड़ी सी बात की थी, जीवन का व्यक्तिगत लक्ष्य क्या है, जीवन के अलग अलग स्टेजेस क्या हैं, वर्ण व्यवस्था। आज हमको इस बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करनी थी। जब हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो आप देखेंगे वर्ण से तात्पर्य क्या है, इसको थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है। वर्ण हम कहते हैं जो गहरा है, जो मूल में है। और वर्ण व्यवस्था जो हमारे समाज में बनाई गई वो एक मौलिक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था? जो समाज के स्तर पर जो व्यक्ति जिस चीज को करना चाहिए वो उस चीज को करे, जो जिस चीज को करने के लिए योग्य हो वो उस चीज को करे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जन्मजात ये व्यवस्था बनी और पता नहीं कैसी कुरूतियां आई और क्या हुआ, इस व्यवस्था की बहुत गलत तरीके से इसके ऊपर हम चल पड़े वर्ण व्यवस्था को लेकर। लेकिन अगर हम श्रीमद् भगवद गीता को ठीक से देखें तो एक गहरी वर्ण व्यवस्था हमको अपने भीतर बिठानी पड़ती है। यह हमारी आंतरिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है। हर मनुष्य चार प्रकार के बिहेवियर निश्चित तौर से दिखाता है और ये चार प्रकार के जो प्रमुख बिहेवियर हैं हर इंसान के वो क्या हैं? इंसान कुछ ना कुछ क्रिएट करता है। क्रिएट करने मतलब कुछ भी क्रिएट करता है। घर बनाता है, रिश्ते बनाता है, परिवार बनाता है, विचार बनाता है, भाव बनाता है, समझ को बनाता है, बुद्धि को बनाता है। मनुष्य लगातार बनाने की प्रक्रिया में रहता है। दूसरी बात, मनुष्य जो बनाता है वो उसे प्रोटेक्ट करता है, वो उसका स्वभाव है। आप देखिए, आप अपने घर को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने विचारों को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप किसी खास राजनीतिक दल में भरोसा रखते हैं तो आप हर बार उस राजनीतिक दल से संबंधित चर्चा में उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो आप किसी भाव में हैं, आप उदास हैं तो कई बार कोई आपको हंसाने की कोशिश करता है तो आपको बुरा लगता है, क्योंकि आप उस भाव को भी इवन बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति आलस में है, वो उस अवस्था को बनाए रखना चाहता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो व्यक्ति के मूल स्वभाव में आता है क्या करना, वो कुछ क्रिएट करता है। और फिर दूसरा क्या आता है, कि वो जिसने जो क्रिएट किया है वो उसे प्रोटेक्ट करता है। तीसरा महत्वपूर्ण जो मानव का स्वभाव है वो एक्सचेंज का स्वभाव है। वो जो अपने पास है दूसरों के साथ बांटता है, संग्रहण का स्वभाव, एक्सचेंज का स्वभाव, जो है वो दूसरों के साथ बांटता है। पर ये बांटना व्यक्ति का बड़ा मजेदार होता है। ज्यादातर लोग जब दूसरों के लिए थोड़ा सा कुछ करते हैं तो बहुत ज्यादा की अपेक्षा रखते हैं। तो लगातार एक्सचेंज जो है वो चलता रहता है, चाहे माँ बेटे की बात हो, चाहे पिता पुत्र की बात हो, चाहे पति पत्नी की बात हो। एक तरह का एक्सचेंज परिवार में भी चलता है, समाज में भी चलता है, हर स्तर पर हम देखते हैं आदान प्रदान लगातार चलता है। मानव का मूल स्वभाव है। और इस एक्सचेंज में हम जितना देते हैं उससे ज्यादा की अपेक्षा रखते हैं। चौथा जो हमारा स्वभाव है वो स्वभाव है चीजों को टाल देना। इसे आप प्रमाद कह लीजिए, आलस कह लीजिए। व्यक्ति जो है इसे अगर आप फिजिक्स की भाषा में कहेंगे तो इसे आप इनर्शिया कह लीजिए। आप चाहते हैं कि आपके घर के बगल में कुछ बच्चे हैं जिनको आप पढ़ाएं, लेकिन आज का दिन निकल जाता है। आप कहते हैं अब मैं कल से शुरू करूंगा। फिर थोड़ा आप एफर्ट डालते हैं, फिर किसी चीज़ में व्यस्त हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं अब ना अगले वीक से इसे पक्का करने वाला हूँ। और फिर अगले वीक कुछ ना कुछ होता है और फिर वो अगले वीक पे अगले दिन पे टल जाता है। तो हमारे स्वभाव का एक भाग है, मुख्य भाग है चीज़ों को आगे के लिए टालते चले जाना। मैं कल से योगा शुरू करूंगा, मैं परसों से स्वाध्याय करूंगा, बहुत सी लंबी लिस्ट बनेगी। हर व्यक्ति ऐसा करता है, मूल स्वभाव में है। चार प्रकार के प्रमुख स्वभाव मनुष्य के, हर एक मनुष्य के, छोटे के, बड़े के, बच्चे के, मनुष्य के कोर में ये स्वभाव छिपे हैं, ये उसका मूल है। तो रचना करेगा, क्रिएट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, एक्सचेंज करेगा और टाल मटोल करेगा। आज जो करना है बाद में करो, मूल स्वभाव। और यही भीतरी वर्ण व्यवस्था है जो श्रीमद् भगवद गीता इशारा करती है कि हम सबके भीतर एक रचयिता है। इस रचयिता का जो नाम रखा गया वो रखा गया ब्राह्मण। ब्रह्म शब्द से इसे लिया, ब्रह्म का मतलब द क्रिएटर। तो ब्रह्म, ये ब्राह्मण जो है वो आपके भीतर का रचयिता है, क्रिएटर है। जब आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, आप एक टीचर के रोल में होते हैं, तो आपके भीतर का ब्राह्मण जो है वो काम कर रहा होता है, आपका स्वभाव, ब्राह्मण स्वभाव। कई बार जब आप वाद विवाद की परिस्थिति में होते हैं तो आपके भीतर क्षत्रिय स्वभाव प्रबल होता है। अरे ऐसे नहीं, ऐसे होता है, आप अपने विचारों को प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत बार आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने सामान को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने साधनों को प्रोटेक्ट करते हैं, तो आपके भीतर एक प्रोटेक्टर भी होता है जिसे क्षत्रिय कहा। हर मानव के भीतर एक एक्सचेंज करने की प्रवृत्ति होती है, ये देना, ये लेना, उसको ये कहा, उसने ये कहा, मैंने उसे ये कहा, एक्सचेंज की एक प्रवृत्ति, इसे वैश्य स्वभाव कहा। और टाल देने की प्रवृत्ति, अरे कल करेंगे ना, कल कल से ध्यान रखेंगे, इसे शूद्र स्वभाव कहा। चार प्रकार का स्वभाव हम सब के भीतर होता है और ये इन चारों तरह के स्वभाव को व्यवस्थित करना, इसे ऑर्गेनाइज करना, इसे सिस्टमैटिकली देखना, समझना और उसके अनुरूप जो है बिहेव करना, रिएक्ट करना, ये क्या कहलाता है? ये है सही में वर्ण व्यवस्था। लोग ने क्या समझा, क्या कर दिया और किस स्तर तक चले गए आप सब जानते हैं। तो इस भीतर की व्यवस्था को ठीक करना है। अब आपका स्वधर्म क्या है? आपका स्वधर्म है अपने चारों भीतर, आपके चारों जो आपके भीतर का जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, आपके भीतर का जो वैश्य है, आपके भीतर का जो ये चारों स्वभाव है, शूद्र है, वो चारों के चारों स्वभाव को आपको मैनेज करना है। आपको देखना है चारों की आवश्यकता होती है। ऐसा मत देखिएगा, जीवन को चलाने के लिए चारों की आवश्यकता होती है। और बहुत बार जब हम शूद्र स्वभाव गड़बड़ करने लगता है, आप देखिएगा व्यक्ति टाल नहीं पाता चीजों को आगे के लिए, दिमाग में लगातार चीजें चलती चली जाती हैं, नींद नहीं आती। जब नींद नहीं आती तकलीफ होती है, परेशानी होती है, पीड़ा होती है, यू गो क्रेजी आई एम टेलिंग यू। तो उसकी अपनी एक महत्ता है, उसको व्यवस्थित करना है, उसे मैनेज करना है। लेकिन कितना, कब, कैसे, तो शूद्र स्वभाव महत्वपूर्ण है। एक्सचेंज, जैसे मैंने कहा, हम लगातार एक्सचेंज करते हैं, इवन बहुत बार निगोशिएट करते हैं, बहुत बार हम आदान प्रदान करते हैं विचारों का, चीजों का, वस्तुओं का, हर लेवल पर। वैश्य स्वभाव, क्षत्रिय स्वभाव प्रोटेक्ट करते हैं। तो दिन में हम अपने कौन से स्वभाव में कितने समय रहते हैं उस पर निर्भर करता है कि हमारा एक पर्सनैलिटी का क्या परसेप्शन निकल के आएगा। सामने वाले को अगर हम ज्यादातर समय ब्राह्मण स्वभाव में रहते हैं तो हमारा व्यक्तित्व का वो झलक एक स्पष्ट दिखेगी। ज्यादातर समय हम प्रोटेक्टर के मोड में रहते हैं तो वो झलक दिखेगी। ज्यादातर समय हम एक्सचेंज, अपना फायदा, मेरा नुकसान, मेरा फायदा, उसका नुकसान, उसका फायदा, मेरा वो, जो वट एवर, इफ यू समबडी, सम पीपल दे कीप डूइंग दिस थिंग, तो उनमें वो स्वभाव प्रबल हो जाता है, वो ज्यादा दिखता है। और अगर टाल मटोल आवश्यकता से ज्यादा है, जीवन की जो बेसिक नीड है उससे ज्यादा है, तो शूद्र स्वभाव। तो ये इस व्यवस्था को ठीक से अपने अंदर बिठाना, इसको एक लय में लाना, इसको एक हारमनी में लाना, इसको एक तरीके से जीना, और फिर स्टेजेस ऑफ लाइफ, इन चारों को व्यवस्थित करते हुए फेज वन में जब हम बच्चों को पालते हैं, बच्चों को जब हम बड़ा करते हैं, तो हमने क्या कहा कि यार जीवन के ना स्टेजेस हैं, देर आर फोर स्टेजेस ऑफ लाइफ। अच्छा, कौन से फोर स्टेजेस हैं? कि सबसे पहली ब्रह्मचर्य की अवस्था है। इस ब्रह्मचर्य की अवस्था में क्या करना है कि हमको हमारे भीतर की उस व्यवस्था को बिठाना है, और उस भीतर की व्यवस्था को बिठा के क्या करना है कि हमारा जो ब्राह्मण स्वभाव, रचयिता का, क्रिएटर का जो स्वभाव है, हम उसके ऊपर काम करेंगे, उसको पॉलिश करेंगे, उसको परिष्कृत करेंगे, उसको अच्छा बनाएंगे। जब हम गृहस्थ में प्रवेश करेंगे तो हम प्रोटेक्टर के रोल में होते हैं, या हम जो है वो वैश्य स्वभाव में होते हैं, हम उसको देखेंगे। तो जीवन पर्यंत, चाहे हम किसी भी लाइफ की स्टेज में हो, ये चारों स्वभाव हमारे साथ लगातार बने रहते हैं। हमको इनको चारों को ठीक से डील करना पड़ता है। जीवन के हर पड़ाव पर ये शूद्र स्वभाव पीछा नहीं छोड़ता, साथ रहता है, हमको इसको ठीक से हैंडल करना पड़ता है। तो इस व्यवस्था को, भीतर की इस व्यवस्था को ठीक से रखना, जीवन के अलग अलग स्टेजेस पर अपने लिए अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां, अलग अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर आगे बढ़ना। ये स्टेजेस क्या है? पहली स्टेज पे क्या है? आत्मविकास। अगर मैं लाइफ के स्टेजेस की बात करूं तो ब्रह्मचर्य में फोकस क्या है? आत्मविकास, स्वयं का विकास। गृहस्थ आश्रम में लक्ष्य क्या है? मेरे परिवार का विकास। वानप्रस्थ का लक्ष्य क्या है? मेरे समाज का विकास। और संन्यास आश्रम का लक्ष्य क्या है? सबका विकास, सबका विकास। और सबका विकास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेरा स्वयं का विकास महत्वपूर्ण है। इसी को तो संन्यास आश्रम कहते हैं। मेरा विकास उतना ही महत्वपूर्ण है जितने मेरे समाज के लोगों का विकास महत्वपूर्ण है। इसी को वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। मेरा व्यक्तिगत डेवलपमेंट जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है मेरे परिवार का विकास। मेरे बच्चों का, मेरी वाइफ का, उसका विकास, मेरे माता पिता का, वो उतना ही मेरे बराबर उतना ही जरूरी है, उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसी को तो गृहस्थ आश्रम कहते हैं। और स्वयं का विकास कैसे होता है, कैसे करें, कैसे काम करता है, यही तो सीखना ब्रह्मचर्य आश्रम का लक्ष्य है। तो ये स्वधर्म के विषय में था, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन को कैसे जीना चाहिए। तो अगर स्वधर्म की बात करें तो इस स्वधर्म का मतलब स्पष्टता। किस बारे में स्पष्टता? इस जीवन का लक्ष्य क्या है और इस जीवन को कैसे जीना चाहिए। ये स्पष्टता जब होती है तो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति अपने स्वधर्म की मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। आज के लिए इतना ही। ओम तत्सत। परमात्मने नमः। ओम शांति 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 ही।